वो नजर आ रही थी, है ना। और ऐसे ही उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की। और फिर 2 साल का अरसा गुजर गया। उन 2 साल का अरसा जब गुजरा तो क्या होता है कि हजरत उनकी बहन, दूध शरीक बहन शीमा, भागी भागी आती है और कहती है कि अरे पता नहीं मोहम्मद को क्या हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब ये कहती हैं तो हजरत साद या हलीमा परेशान हो जाती हैं कि हैं उन्होंने तो कभी एक जरा सी तकलीफ भी नहीं होने दी। और जब ये सुना कि क्या हो गया तो भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई तो देखा तो प्यारे नबी खड़े हो रहे थे, लेटे थे, लेटे फिर खड़े हो रहे थे और अपने कुर्ते मुबारक को झाड़ रहे थे। देखा कि क्या हुआ, तो कुछ नहीं। तो शीमा उनकी बहन ने कहा कि दो दो आदमी आए थे, अजीब सी शक्ल के थे, बहुत उनका सफेद चेहरे थे, उन्होंने भाई को लिटा दिया और लिटाने के बाद उनके ना यहाँ से गले से लेके पेट तक चीर दिया और फिर उनको है ना उनके पेट में से, उनके सीने में से कुछ निकाला, फिर उसको एक उस पे रखा और फिर वो धोया और धोने के बाद वापस रखा और फिर है ना वो सही हो गया। इतने में डर गई और मैं आपको बताने आ गई। तो वो घबरा गई, जब उन्होंने कुर्ता मुबारक उठा कर देखा तो वाकई में एक चीरा लगा हुआ निशान था, जैसे कि कोई जख्म हुए हो और ठीक हो गई, है ना। ये पहला ऑपरेशन था, ये पहला चाक हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सीनाए अतहर। मैंने जमजम से जिसको धोया वो सीना ये नबी है। और फिर दिले मुबारक को धोया और धोने के बाद में छोटी सी यानी 2 साल की उम्र, 2.25 साल की उम्र या कुछ कम कुछ ज्यादा, क्योंकि रवायात में कई उम्रों का बारे में लिखा है। और फिर ये 2 साल का अरसा जब हो गया और दूध छूट गया, दूध छूट गया तो हलीमा सादिया उनको लेकर हजरत आमीना के पास आती है। अच्छा, कहीं तो रिवायत में 2 साल के अंदर का ये वाकया बताया जा रहा है और कहीं पर 2 साल के बाद का भी लिखा हुआ है, 3 साढ़े 3 साल का अरसे में भी लिखा है। हजरत आमीना खुश हो जाती है, जाहिर है कि 2 साल से बच्चा छूटा हुआ था तो माँ की हालत क्या होगी जबकि शौहर भी सर पर नहीं। तो बहुत प्यार से ले लेती हैं और बहुत प्यार करती हैं। आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो उनका नक्शा क्या होता, वो अपने बेटे को देख देख के खुश होती है ना। लेकिन अफसोस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले ही यतीमी लिख दी गई थी। क्योंकि यतीमी क्यों लिखी गई थी, क्योंकि यतीमों के सरपरस्त अल्लाह ताला बनाने वाला था, है ना। तो यतीमों का दुख आपके सीने अतहर में उतारना था कि यतीमों का दुख क्या होता है। और मक्का में जब वो लेकर गई हजरत साद या हलीमा, तो मक्का में इन दिनों शदीद वबा फैली हुई थी, एक एक घर में कई कई जनाजे हो रहे थे और तमाम शहर परेशान था, है ना। बस्ती से बाहर इतनी कब्रें बन चुकी थी और लोग इतने परेशान थे कि क्या होगा। वबा का जोर देख देख कर हजरत हलीमा भी घबरा गईं और प्यारे हजरत आमिना भी घबरा गईं कि छोटे से बच्चे हैं और फिर क्या होगा। तो माँ की ममता इसको देख कर और है ना एकदम बेकरार हो गई। और इधर हलीमा, क्योंकि वो भी तो दूध पिलाने वाली थी ना, कितनी ममता थी उनको, वो भी बेकरार हो गई। तो उन्होंने मशवरा दिया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको वापस ले जाती हूँ और फिर मैं इनको अपने पास रखती हूँ। तो हजरत आमिना ने उनको इजाजत दी कि नहीं आप ले जाओ। उनको ये मशवरा बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने दिल पर जब्त करके पत्थर रखकर और फिर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनके साथ में भेज दिया। और फिर 3 साल तक वो हजरत हलीमा सादिया के पास रहे और हजरत हलीमा को यह सआदत मिलती रही, है ना। यानी कि वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उनको 3 साल और प्यारे नबी के साथ रहने का मौका मिल गया। कैसी खुशकिस्मत थी कि 5 साल तक उन्होंने अपने पास रखा। अब या तो ये दिल के चीरने का वाकया इनके बाद हुआ था कि जब वो दोबारा ले गई थी, या पहले हुआ था, क्योंकि ये कई रिवायतों में अलग अलग तरीके से। फिर तीन साल तक हलीमा सादिया को यह हासिल हुई सआदत, और बनू साद के कबीला फसाहत में मशहूर था। इस कबीले में बुलंद पाया शायरी का बहुत ज्यादा बहुतात थी। अरब कहा करते थे कि बनू साद के खेतों में सब्जे की जगह फसाहत उगती है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा और मीठे बोलों को सुनकर सब हैरान रह जाते थे कि इस कमसिनी में ऐसे एजाज गोयाई है। तो बड़े होकर फसाहत और हुस्न तकल्लुम को इन लबों पर नाज होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाया हलीमा की बकरी का दूध पीते तो अपनी रजाई बहन के लिए अज खुद हिस्सा छोड़ देते, दूसरे धन को मुंह न लगाते। छुटपन में इस अदल और इंसाफ पर ही देखकर हलीमा के घर वाले कहते कि अब्दुल्ला का दुर्र यतीम बड़ा होकर दुनिया को इंसाफ और भलाई से मामूर करेगा। है ना, वहां के लोगों के अंदर ये आदत थी। हम लोग भी बोल देते हैं ना कि पूत के पैर पालने में नजर आ रहे हैं, देखो अभी से ये कितना होशियार है, कैसा है। तो इस तरह की बातें वो लोग भी करते ही होंगे ना। और माँ के और इसकी माँ ने सच कहा था कि इस बच्चे की बड़ी शान होने वाली है। इस नेक बीबी के ख्वाब एक एक करके पूरे होते नजर आ रहे हैं, है ना। कई साल तक हलीमा का घर इस सआदत और बरकत से बहरा अंदोज रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ने इनकी सारी परेशानियां और गम दूर कर दिए। वो दुआएं करते करते नहीं थकते थे कि अल्लाह ने हमको कैसा प्यारा बच्चा अता फरमाया, है ना। लेकिन और वो चाहती थी कि ये हमारे ही पास बड़े हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कुदरत इस सआदत को सिर्फ एक घर के लिए मखसूस नहीं करना चाहती थी। ये तजल्लियां किसी एक काशाने के लिए नहीं थी, तमाम दुनिया और आफाक के लिए थी। इस रोशनी से मशरिक और मगरिब जगमगाने वाले थे। और सहाबे रहमत सब्जा जारों ने लेकर चटियल मैदानों तक पर बरसने वाला था। एक जगह कैसे रुक सकते थे, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला को इनसे फैज फरमाना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 5 साल की थी जब हलीमा इन्हें आमना के घर वापस लाई और माँ को अमानत इनको सौंप दी। दोनों को गम और खुशी थी। हजरत आमीना को मिलने की खुशी थी और हजरत सादिया को बिछड़ने की खुशी थी, है ना। और एक ही के वजह से थी, आमना को नूरे नजर से मिलने की और हलीमा को जुदाई का गम था। एक के लबों पर मुस्कुराहटें तो दूसरे की आंखों में आंसू थे। ये खुशी भी मसूद थी और ये गम भी मुबारक था कि इन दोनों बातों का ताल्लुक एक ही जात से है और एक ही वजूद से था, है ना। बीबी हलीमा अरमानों और तमन्नाओं के हुजूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द छोड़कर वापस हुई और बहुत दिन तक उनका दिल भी नहीं लगा अपने घर में। कैसे लगता, कैसे लगता हबीबे खुदा, तो घर से चले गए थे, है ना। फिर क्या हुआ, फिर आगे हजरत आमिना ने 7 साल के जमाने में बेवीगी गुजारी, 7 साल का जमाना गुजारा। अब्दुल मतलब ने काफी उनकी दिलजोई करी, बहुत प्यार से रखा। हजरत आमना के ननिहाल के लोग यसरब यानी मदीना में रहते थे, इनसे मिले हुए उनको काफी वक्त हो गया था। तो उन्होंने अपने ससुर से कहा कि मैं वहां मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने इजाजत दी कि हाँ ठीक है, आप जाइए। जब जब है ना प्यारे नबी के साथ में मदीने का ये सफर जब किया तो साथ में कौन थी, साथ में उनके उनकी दवो थी कनीज और उनका नाम था उम्मे ऐमन, है ना। और जब वो वहां पर उनके साथ पहुंचती हैं तो मदीने के तमाम घरानों में बहुत खुशी होती है, क्योंकि कमसिन थी, सबको प्यारी थी। और है ना, मदीने के लोग जो है ना, वो लोग मेहमान नवाज बहुत थे और हैं आज भी। मगर उनमें भी एक खास एक ना वो है घराना, जो बनू नज्जार, उनको ये शर्म उनमें सबसे ज्यादा था। तो वो जो बाहर से परदेसियों की राह में आंखें बिछा देते थे, तो हजरत आमिना तो फिर उनकी अपनी थी, है ना। खूब खातिर तवाज़ा उनकी की और उनके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए। और है ना, जब प्यारे नबी वहां कुछ वक्त रहे तो सब लोग बच्चे उनके साथ में खेलते थे बाहर, के हमारे साथ खेलें हमारे साथ खेलें। तो मदीने के जो बच्चे थे वो ज्यादा मुहज़्ज़िब नहीं थे और ना बाशऊर थे। वो लोगों के खेल भी अजीबोगरीब थे, एक दूसरे के साथ में गाली गलौज से बातें करते थे और लड़ते थे, एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ लेते थे, कोई कंकरियां फेंक रहा है। मगर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करीब भी नहीं जाते थे। कोई बच्चा अगर तीर अंदाजी का मश्क करता तो उसके पास जाया करते थे, या फिर बनू अदी बिन नज्जार की बावली यानी के कुआं जो जो फैला हुआ था, या कोई इस तरीके का जैसे कि तालाब टाइप का, तो उसमें कोई है ना तैराकी अगर कोई किया करता था तो उसमें तैरा किया करते थे, क्योंकि प्यारे नबी को स्विमिंग से भी बड़ा लगाव था, बहुत शौक था स्विमिंग स्विमिंग का, और तीर अंदाजी का भी बहुत शौक था। अल्लाहु अकबर। फिर मदीने में एक महीना कयाम के बाद में हजरत आमिना मक्का जाने के लिए वापस हुई। इस बीच में जब है ना आप है ना वहाँ खेला करते थे तो है ना लोग आके आपके बारे में ना बातें बताया करते थे कि ये अजीब बच्चे हैं, ये जो आए हैं मक्का से, ये बनू हाशिम के जो मतलब के पोते हैं, ये तो अजीब हैं, ये है ना किसी के साथ में खेलते नहीं, ये आम बच्चों से हटकर हैं, सब में चर्चा होता था। और फिर कोई आके कहता था कि अरे ये तो है ना, जब मैंने देखा कि जब ये है ना दरख्तों के पास जाते हैं तो दरख्तों में से कुछ आवाजें निकलती हैं और वो उनके वो झुक से जाती हैं टहनियां, उनकी शाखें झुक जाती हैं ना, ऐसा लगता है जैसे वो इन्हें सलाम कर रही हैं। कोई आके कहता है अरे मैंने तो ऐसा सुना ऐसा देखा है कि पत्थरों में से भी आवाज आ रही है और पत्थरों में से सलाम की आवाजें आ रही है। अल्लाह हू अकबर। और क्यों ना आती, ये कौन है, ये ना प्यारे प्यारे आका अल्लाह के हबीब और खातमुन नबीयीन, कैसे अल्लाह कैसे वो खुशकिस्मत पत्थर थे, कैसे वो रास्ते थे कि जहां पर आप अपने प्यारे प्यारे कदमों को ले जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हजरत आमिना वहां से रवाना हुई तो रास्ते में अबवा एक मकाम पड़ता है जहां पर हजरत अब्दुल्ला उनके शौहर की कब्र थी, वहां ठहर गई। और जब वहां ठहरी तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, और तबीयत खराब होते होते इतनी ज्यादा हुई कि है ना चलना दुश्वार हो गया और उनको वहां पर कयाम करना पड़ा। क्योंकि पहले ऐसा तो नहीं था कि जगह जगह डॉक्टरों के ये शफाखाने खुले हुए हैं, है ना, या तो अताई तबीब जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे या फिर काहिन और राहिबों से झाड़ फूंक कराया करते थे। तो हजरत आमना की जो तीमारदारी कर रही थी वो हजरत ऐमन कर रही थी, उनकी जो वो साथ में आई थी वो उनकी तीमारदारी में कर रही थी, और पूरे सफर में उनकी रफाकत में बहुत काम आई। बीमार और नहीब हजरत आमना की गमगीसारी और खिदमत गुजारी में उम्मे ऐमन ने जरा बराबर कोताही नहीं करी, मगर हजरत आमीना को शिफा नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहीं पर वक्त आखिर लिखा था। और फिर कैसा वक्त होगा सफर में और कोई नहीं, और माँ माँ जो है नजा के करीब और छोटे बच्चे साथ में, है ना, 5 से 6 साल की उम्र, 6ठा साल था या 6 साल कंप्लीट होने वाले थे प्यारे नबी के उम्र अजीज के, और माँ का उस वक्त आखिरी वक्त चल रहा था। उस वक्त कितना रोए होंगे और कैसी बेचैनी और बेकरारी होगी। हजरत आमना को अपने मरने से ज्यादा दुख किस बात का था कि मेरे बाद मेरे इस लखते जिगर का क्या होगा, ये तो अकेले रह जाएंगे, पैदा होने से पहले बाप का साया सर से उठ गया और अब कुछ होश संभाला तो माँ को मौत आई आई जा रही है ना। हर माँ ऐसा सोचती है ना कि दुनिया में बच्चा माँ बाप का ही सहारा होता है, इन्हीं के शफकत के साए में बच्चे परवान चढ़ते हैं। दूसरे अजीज रिश्तेदार कितनी गमख्वार और दिल दही क्यों ना करें, माँ बाप की मोहब्बत की बात भला कहाँ पैदा होती। यही गम हजरत आमना को मरते दम तक रहा। उम्मे ऐमन बहुत तसल्लियां देती, ढारस बंधाती, लेकिन जब मौत आ गई तो फिर सारी तसल्लियां धरी की धरी रह गई। और फिर वो वक्त आया कि हजरत आमिना जुदा हो गईं और इंतकाल कर गईं, है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहीं अबवा में, जहां अब से 7 साल पहले अब्दुल्ला पेवंद खाक हुए थे, हजरत आमिना भी मदफून हुई, है ना। ऐसा वक्त था दोनों वालदेन जुदा हो गए। प्यारे नबी की अपनी जिंदगी में ये पहला सानिहा था, और इस सानिया में कितना दर्द था कि माँ की अब्दी जुदाई, वो भी कहाँ परदेश में, अजीज कारिब से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। मक्का में होते तो दादा होते सरपरस, दादा प्यार से गले लगा लेते, है ना, चचा लगा लेते, लेकिन यहाँ आंसू पोंछने वाली कौन थी? उम्मे ऐमन के सिवा आंसू कोई पोंछने वाला नहीं था। लेकिन उम्मे ऐमन ने इतना प्यार किया और अपनी आगोश में ले लिया। और प्यारे नबी को रोता देखकर उम्मे ऐमन ने बहुत तसल्ली दी, है ना। मगर ये वही दर्द जान सकता है जिस पे ये गुजरती है। और फिर जब उम्मे ऐमन चंद दिन के बाद यतीम बसीर प्यारे नबी को लेकर इसी मक्का में अब्दुल मतलब के पास आती हैं, तो प्यारे नबी का नाम यतीमन भी तो है ना, यतीमन प्यारे नबी का नाम है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मतलब यानी कि दादा सैयदुल कुरैश, उनको जब पता लगता है कि रास्ते में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो इतने इतना उनको रिक्कत तारी होती है कि वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि हाय मेरा बच्चा, तो मेरा बेटा तो चला ही गया था और बाप का साया भी उठ गया था और अब माँ भी चली गई। फिर वो सबको मुखातिब करके कहते हैं कि मेरे मेरे बेटे जो हैं वो मेरी आंखों की रोशनी हैं, लेकिन ये मेरे दिल का चैन है ना, ये मेरे दिल का चैन है। रब काबा की कसम, मोहम्मद इन सब से ज्यादा मुझे प्यारे हैं। और फिर दस्त शफक्कत रख देते हैं अपने किसके सर पर, प्यारे प्यारे आका के सर पर। अल्लाह हू अकबर। और जब कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है तो उसे आजमाइशों की भट्टियों में तपाती है और गम अलम के खारजारों से गुजारती है। पहले गमों से दिल को गुदास करती है, इस गुदास को दूसरों के गमखारी के लिए महसूस कराने के लिए। प्यारे नबी के दिले मुबारक को अल्लाह ताला ने बचपन से गमों से रोशनास कराया था, ताकि आप हर उम्मती का गम आपके सीने में, हर उम्मती के गम आपके सीने अथर में मौजूद है ना। तो आपके आपकी तरबियत किस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, ताकि इन सानिहों से तबीयत में निखार पैदा करे। ऐश और इशरत से दुनिया की बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। आलाम और मसाइब के उफक ही अजमतों और बुलंदियों के आफताब तुलू हुआ करते हैं। कुदरत को यही सिफत और इसका यही दस्तूर और यही मसलहत है। अल्लाह ताला अपनी मसलहत को खूब जानता है। माँ के मरने के कोई 1 साल, अभी 1 साल गुजरा था और फिर दादा का इंतकाल हो गया, जो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के कफील थे। हाय कैसा वक्त होगा ना, कि अभी अभी 1 साल पहले वालिदा का इंतकाल हुआ और 1 साल गुजरा तो शफीक दादा भी गुजर गए। दुनिया से चल बसे अब्दुल मतलब को मरते दम इस बात का बड़ा गम था कि बेमाँ बाप का बच्चे की कफालत अब कौन करेगा। काश मैं चंद दिन और जिंदा रहता, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों पर खड़े हो जाते, लेकिन अब दिल मतलब कि इस आरजू पर कुदरत मुस्कुरा रही कि इब्ने हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसहारा समझकर गम करता है, इसको यतीम जानकर रोता है। बूढ़े सरदार, ये यतीम तो यतीमों का वाली और गुलामों का मौला है, जिसके दुनिया में सारे सहारे टूट गए हों, इसे ये एक दिन ये उसका सहारा उसको सहारा देगा। ये वो है कि चांद सितारे इसके इशारे पर गर्दिश करेंगे। अब्दुल मतलब ईमान इत्मीनान के साथ जान दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम न कर, इसकी गमखारी के लिए इसका खुदा काफी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी खूबसूरत प्यारे नबी के बचपन को अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो कैसे गमों से भट्टी में कैसे अल्लाह ताला ने तपाया है ना। इसलिए अपने छोटे छोटे गमों को हम लोगों को नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने हबीब को यतीम बनाया, मिस्कीन बनाया, अपने हबीब के मोहब्बत करने वालों को लिया, और है ना कोई पैसों के बहतात नहीं दी, मालदारी नहीं दी, यानी दुनियावी एतबार से। वरना अल्लाह ताला ने खुद फरमाया था कि तुम अगर चाहो तो मैं पहाड़ को सोने का कर दूं और वो आपके इशारे पर चले, लेकिन आपने इसको भी मना फरमा दिया। कितनी हिकमताना जिंदगी गुजारी है नबी पाक ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मतलब के इंतकाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने यतीम भतीजे को अपनी निगरानी और किफालत में ले लिया, क्योंकि वो शुरू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने बाप के वजह से के वो थे सरपरस्त तो उनकी मोहब्बत दबी हुई थी। हकीकी दर्द किसे होता अगर, मगर अबू तालिब ने इनके अंदेशों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि है ना उस वक्त जो थे ना वहां का ये दस्तूर था कि जो यतीम हो जाते थे उनके ऊपर हाथ तो रखते थे लेकिन उनकी वो दिलजोई नहीं करते थे जो हक था। लेकिन अबू तालिब ने सबके अंदाजों को गलत करा, अंदेशों को गलत करा, और अबू तालिब सच्चे गमखौर निकले। जैसे इनके दिल में पहले ही से नबी पाक के लिए जगह थी है ना, और बाप का साया दूर होते ही इब्ने अखी की मोहब्बत किफालत और गमखारी के लिए जो है अंगड़ाई लेकर उठ बैठी उनके अंदर की फितरत, और फिर पूरे जोर शोर से उन्होंने मोहब्बत शफक्कत के उनके आंसुओं से भतीजे के चेहरे से गर्द यतीमों को धोया और हर तरह की गमखारी की, दिल दही के तमाम मयसर असबाब सर्फ कर दिए, अपने बच्चों से ज्यादा शफकत और राहत के साथ पाला। अब्दुल्लाह के दुर यतीम की जरा सी बेचैनी भी गमखार चचा को गवारा नहीं थी। प्यारे नबी के पैर में जरा सा कांटा भी चुभता तो उनको तकलीफ होती थी। ये हालत देखकर अहले मक्का क्या कहते थे, भाई अबू तालिब आखिर सैयदुल कुरैश अब्दुल मतलब का बेटा बल्कि सही वारिस और जानशीन है। जैसा जैसे दिल में नरमाहट और है ना एक वलवला था, वही अबू तालिब के दिल में भी था है ना, क्योंकि उनके बाद में जो सरदारी मिली थी ना वो अबू तालिब को मिली थी। अल्लाह हू अकबर। और फिर बच्चा भी कैसा है कि गैर देखकर ना सिर्फ प्यार करे बल्कि इनका एहतराम करे। इस यतीम की खिदमत करके अबू तालिब वाकई अपने अपने लिए खैर और सआदत का जखीरा जमा कर रहे हैं। ऐसी प्यारे नबी की जो जिंदगी गुजर रही थी ना, तो आप ऐसा शफाफ आईने की तरह गुजर रही थी। जब हजरत हलीमा सादिया के हाथ थे तो एकदम शफाफ आपकी वो थी, फिर वहां से जब यहाँ आए और ये अरसा जो गुजर रहा था ये भी आईने की तरह चमकदार गुजर रहा था, कहीं एक बाल बराबर भी कमी नहीं थी प्यारे नबी के जब बचपन से लेके और जब आपको नबुवत का ऐलान करने का हुक्म हुआ तब तक। इतनी शफाफ जिंदगी नबी पाक की गुजरी थी और अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत की थी है ना अपने हबीब की। अल्लाह अकबर। अब वहां का ये जो दस्तूर था, वहां जो क्या होता था वहां पर कि है ना अच्छे खासे खाते पीते घरानों के बच्चे जंगलों में जाकर ऊंट और बकरियां चराया करते थे, तो और ये उनका क्या था, महबूब मशगला था। तो प्यारे नबी भी मक्का के जंगलों में बकरियां चराया करते थे, और मशियते मक्का के जो बबूलों की एक एक पत्ती से बोल रही थी कि आज इन वादियों में जो बकरियां चरा रहा है, कल इंसानियत के गल्ले की निगेबानी करेगा। ये राइये गनम हकीकत में राइये इंसानियत है, जो इस गल्ले में आ जाएगा इसे फलाह मिलेगी, और जो इसकी टुकड़ी और जमात से बाहर हो जाएगा इसके लिए शकावत और गुमराही मुकदर कर दी जाएगी, है ना। जब प्यारे नबी मक्का की गलियों में जंगलों में बकरियां चराते थे, अबू तालिब की बकरियां, चचा की बकरियां, तो वहां के जो कांटे थे, जो वहां के दरख्त थे, जो वहां के जर्रात थे, वो बातें करते थे आपस में कि आज ये बकरियों का गल्ले को लेके जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये पूरी इंसानियत के गल्ले को लेकर और हाकेंगे कहाँ पर, जन्नत की तरफ, है ना। और प्यारे नबी ने पूरी इंसानियत को जन्नत के रास्ते की तरफ को बुलाया, आवाजें लगाई कि आ जाओ आ जाओ, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, है ना, आओ निजात पाने के लिए, आओ निजात पाने के लिए। प्यारे नबी ने ही वो रास्ता दिखाया, प्यारे नबी ने ही पूरी इंसानियत, पूरे इंसान के रेवर को लेकर और जन्नत के रास्ते पे डाल दिया है ना। प्यारे नबी की मुशक्कतें, प्यारे नबी की कोशिशें और प्यारे नबी की जो मेहनतें हैं वो रंग लेकर आई। बस आज इतना ही, इंशाल्लाह रहमान फिर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी के इन वाकयात पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी छोटी छोटी तकलीफों पर जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, है ना। किसी का बच्चे का कोई बाप गुजर जाता है, दुख तो बहुत होता है, या किसी की माँ चली जाती है, दुख तो बहुत होता है, क्योंकि एक फितरी बात है। लेकिन अल्लाह ताला सबका कफील भी है, सबका पालने वाला भी है। प्यारे नबी की जिंदगी हमसे क्या क्या हमसे सवाल करती है, आपकी सीरत हमसे क्या कहती है ना। लेकिन हमको बस अपनी राहों को दुरुस्त रखना है, बस अपनी राहों को दुरुस्त रखना है, यही तो हुक्म है, यही तो हमसे हमसे मांगा जा रहा है। अल्लाह और उसका रसूल हमसे क्या मांग रहा है? अल्लाह ताला ने अपना हुक्म दिया ना, तो वह हुक्म हम तक प्यारे नबी ने पहुँचाया कि सिराते मुस्तकीम पर चलो, है ना। सिराते मुस्तकीम पर चलना सिर्फ हुक्म ही नहीं सिखाया, बल्कि चल कर बताए कि देखो ऐसे चलो, आप चल कर बताए। आपने कहा कि हराम से दूर मत जाओ, लेकिन सिर्फ हुक्म नहीं दिया, वो करके बताया कि देखो ऐसे बचना है, ऐसे रहना है, है ना। अपनी अजवाज को रखा तो हुक्म दिया कि इस तरीके से औरतों ऐसे रहना है, तो ऐसे रहने के लिए पहले अपनी अजवाज को उसमें दाखिल किया, ऐसे रखवाया, फिर हमको बताया गया कि ऐसे रहना है। तो यानी हमको पहले आपने प्रैक्टिकल करके बताया, मर्दों को खुद भी, अपने सहाबाओं को भी, और औरतों के लिए अपनी अजवाज को और अपनी बेटियों को, है ना। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हम ये सवाल बार बार अपने से करें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, और हमको वो बनाएं कि हम जब यहाँ से जाएंगे ना, तो फिर एक खूबसूरत सी जन्नत है ना, बहुत प्यारी जन्नत है, वहाँ हमको पहुँचना है, हमको एक घर लेने का है, हमको खरीदारी करने की है ना जन्नत में, जो हमारी जमीन है वहाँ पर बुकिंग हो रही है, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला बुकिंग करवा रहा है कि दुनिया में नेक अमल करो, अच्छे से रहो, तो जन्नत में तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे महलात तैयार करता हूँ, है ना। तो आज हमारे यहाँ पे अपने आप को एक ना दायरा हुदूद में रखना है कि हमको कैसे रहने का है, अपने आप को देखने का है, अपने लिबास को देखने का है, क्या हमारे सर पे इतना दुपट्टा है जितना के जन्नत पाने के लिए हमें चाहिए, क्या हमारे कमीज की आस्तीनें इतनी बड़ी हैं तो जन्नत पाने के लिए जितना सतर ढांकने का हमारे नबी ने हुक्म दिया है, हमारी आस्तीनें हैं इतनी? या हमारी पिंडलियां इतनी ढकी हुई हैं जितनी हमको जन्नत में घर मिल जाएगा? अगर इतनी ढकी हुई हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा। या हमारी टांगे या हमारे कपड़े इतने टाइट हैं या इतने ढीले हैं, क्योंकि टाइट पहनने का हुक्म नहीं है, हमारे कपड़े इतने ढीले हैं कि हमको जन्नत में रहने के लिए घर मिल जाएगा? हमारी नमाजें कैसी हैं, हमको अपनी नमाजों की भी तरफ पूरी तरीके से निगाहें डालनी और पूरी कोशिश करने का है कि अपनी नमाज बहुत अच्छी करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना? बहुत से लोग हैं ना जुमे की रात में या जुमे के दिन इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं कि हमने एक दिन 8 दिन का पढ़ डाला। कुरान पाक की तिलावत भी इतना करते हैं, इतना ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत, बहुत सूरतें पढ़ते हैं और पूरे 8 दिन फिर कुछ नहीं पढ़ते। तो ये हुक्म नहीं है, हुक्म यह है कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत की जाए, कम से कम पाव पारा लाजमी पढ़ना चाहिए। रोजाना अपने घर में कुरान पाक की तिलावत की जाए तो पाव पारा रोज पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर में अल्लाह का कलाम की आवाज गूंजेगी और खैर और बरकतें आएंगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी ने हमको बताया कि अपनी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत तरीके से पढ़ो, है ना? कलाम कौन सा है? अल्लाह का कलाम है, कोई मामूली कलाम नहीं है, ये दुनिया की किताबों की नहीं है बात, ये अल्लाह का कलाम है। तो उसको हमको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको बहुत अच्छी तरीके से अदा किया जाए, है ना? ठहर ठहर कर, कुरान खुद हमसे ये हुक्म देता है कि मुझको ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ो। तो ठहर ठहर का मतलब ठहर ठहर के पढ़ने का ना, इतनी तेजी से कि अभी हमको पूरा पारा खत्म करने का है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद दीन, ऐसे नहीं पढ़ने का हमको। चाहे हम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद दीन, है ना? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, है ना? चलो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, तो फिर ऐसे ही अपनी जुबान जो है ना ऐसे ही ढल जाती है, और फिर जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो हमारे से आगे बढ़ा ही नहीं जाता, फिर हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अपनी इंसान जो है ना आदतों पे बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे बैटरी लेने की आदत है बहुत सो को, तो वो बैटरी छूटती नहीं है, तो आदत है ना, अगर वो छोड़ देंगे कोशिश करेंगे तो छूट जाएगी। तो आदत जैसी भी बनाए, ठीक है? चलो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हाथ उठा लें दुआ के लिए, समय के दरवाजे शरीफ।